क्या कभी किसी के दिमाग में ये बात आई है कि महज एक व्याकरण का नियम, मेरा मतलब है सिर्फ एक छोटा सा विराम चिन्ह, पूरी दुनिया के बनने की कहानी को पलट सकता है?
आमतौर पर लोग ऐसा नहीं सोचते। हम तो यही मानकर चलते हैं कि प्राचीन ग्रंथ बस बस सीधी साधी कहानियां हैं।
बिल्कुल, जब हम ब्रह्मांड के बनने की बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी कहानी का ब्लूप्रिंट एकदम साफ और सटीक होगा।
हाँ।
है ना? लेकिन क्या हो अगर वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एक ऐसे शब्द पर टिका हो जिसके दो बिल्कुल अलग मतलब निकलते हो?
हाँ, एक मतलब जो ये कहता है कि ब्रह्मांड शून्य से बना, और दूसरा जो ये कहता है कि निर्माण के समय कोई कच्चा माल पहले से ही वहां मौजूद था। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला है।
सही कहा, और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का, इस पूरी चर्चा का केंद्र यही रहस्य है। आज हम रॉबर्ट वेनॉय की ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 के विस्तृत नोट्स के भीतर गोता लगाने वाले हैं,
और ये बहुत ही दिलचस्प विषय होने वाला है।
बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल इतिहास के कुछ पन्ने पलटना नहीं है, हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पत्ति यानी जेनेसिस के बिल्कुल शुरुआती वाक्य कैसे ईश्वर, इस ब्रह्मांड और खुद हमारी यानी मानवता की नींव रखते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे हिब्रू भाषा की एक छोटी सी गुत्थी ने सदियों से दुनिया भर के विद्वानों को उलझा कर रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं।
इस अध्ययन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखिए, ये सिर्फ किसी धर्म या प्राचीन मान्यता तक सीमित नहीं है। ये असल में इस बात की एक मास्टर क्लास है कि हम किसी भी जानकारी को कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं।
हाँ, मतलब आलोचनात्मक सोच।
बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमें सिखाता है कि सतह पर जो दिख रहा है असली कहानी उसके कहीं अधिक गहरे स्तर पर चल रही होती है।
तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से ही इस चर्चा की नींव रखते हैं। वेनॉय के नोट्स के हिसाब से उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो तस्वीर पेश की गई है उसमें ईश्वर के स्वरूप को कैसे समझाया गया है?
नोट्स इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं। वो बताते हैं कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान रचयिता है। जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो एक वाक्यांश बार बार एक लय की तरह आता है,
वो और ईश्वर ने कहा वाला हिस्सा।
हाँ, और ईश्वर ने कहा। ये महज बोलने की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने की वो असीमित शक्ति है जो केवल एक आदेश से वास्तविकता को जन्म देती है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ईश्वर अपनी रचना से पूरी तरह अलग है, सेपरेट है।
हाँ, और इसे समझने के लिए हमें उस समय के प्राचीन दौर में जाना होगा। उस काल में, और यहाँ तक कि उसके बहुत बाद तक भी, ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं में सर्वेश्वरवाद या प्रकृति पूजा का चलन था।
मतलब लोग प्रकृति को ही भगवान मानते थे।
एकदम सही, लोग मानते थे कि नदियां, पहाड़, सूर्य, यही सब ईश्वर हैं, या ईश्वर उसी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन उत्पत्ति का नजरिया यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका करता है।
वो कैसे?
वो रचयिता और उसकी रचना के बीच एक स्पष्ट और अटल विभाजन खींच देता है। एक्सपर्ट जेरन्ड स्ट्राइट अपनी किताब द गॉड हु एक्ट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति और इतिहास दोनों से पूरी तरह परे है, वो ट्रांसेंडेंट है।
ट्रांसेंडेंट मतलब वो भौतिक दुनिया से बंधा हुआ नहीं है।
हाँ, राइट, एक लैटिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुई जेनेरस। इसका मतलब है अपने आप में अद्वितीय या जिसके जैसा कोई और न हो। यह विचार उस समय के बुतपरस्त धर्मों के पूरे आधार को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है।
अच्छा, अगर ईश्वर प्रकृति नहीं है तो इसका क्या अर्थ है? मैं इसे एक उपमा से समझाने की कोशिश करूंगी। ये बिल्कुल एक चित्रकार और कैनवस की तरह है।
अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है।
है ना? देखिए, चित्रकार कैनवस को रंगता जरूर है, उसमें अपनी पूरी कला उड़ेल देता है, लेकिन वह खुद कैनवस नहीं है।
बिल्कुल,
वो कैनवस से पूरी तरह अलग है, वो अपनी रचना के बाहर खड़ा है।
यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ईश्वर अपनी रचना से अलग है तो उस रचना यानी ब्रह्मांड और उसमें मौजूद इंसानों का क्या महत्व है, ये सवाल सीधे पिछले खंड से जुड़ता है।
हाँ, क्योंकि अगर ब्रह्मांड ईश्वर का हिस्सा नहीं है तो वो क्या है?
वही बात है, ब्रह्मांड स्वयं अस्तित्व या अपने आप में दिव्य नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है, ब्रह्मांड मूल रूप से बुरा भी नहीं है। उत्पत्ति में बार बार कहा गया है ये अच्छा था,
और ये बात भी प्राचीन दुनिया के हिसाब से बहुत हैरान करने वाली है।
बिल्कुल,
क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो बहुत सी दार्शनिक विचारधाराएं ये मानती थीं कि भौतिक पदार्थ यानी मैटर हमेशा से बुरा या भ्रष्ट रहा है।
हाँ, कई प्राचीन दर्शन मानते थे कि भौतिक दुनिया एक तरह की कैद है, लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भौतिक दुनिया को अच्छा माना गया है
और इसी अच्छी दुनिया के निर्माण का जो चरम बिंदु है, मतलब कल्मिनेशन, वो छठे दिन आता है जब इंसान की रचना होती है।
सही कहा, इंसान को ईश्वर की छवि में बनाया गया है।
अब जाहिर है ईश्वर कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं, तो यहाँ छवि का मतलब कोई शारीरिक समानता नहीं हो सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक आध्यात्मिक, तर्कसंगत और नैतिक स्वरूप की बात है।
और इसी के साथ इंसान को जानवरों पर अधिकार और पृथ्वी को वश में करने का कार्य दिया गया है। उत्पत्ति 1:28 में इसका जिक्र है।
हाँ, डोमिनियन और सबड्यू, यहाँ अधिकार का मतलब कोई विनाश करना नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रतिनिधि या प्रबंधक के रूप में काम करना है।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान का ये अधिकार उसे बाकी रचना से बिल्कुल अलग कर देता है।
एकदम सही।
हमने अब तक एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देखी है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सिस्टम से बाहर है, एक भौतिक दुनिया जो अच्छी है, और एक इंसान जिसे उस दुनिया को संभालने का जिम्मा दिया गया है।
सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा है। हाँ, बहुत तार्किक लगता है। लेकिन अब हम ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित दुनिया की जो पहली ईंट रखी गई थी, जरा उस पर गौर करते हैं। यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं।
हाँ, उत्पत्ति का पहला वाक्य कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा विवाद सिर्फ एक हिब्रू शब्द बेरेशीत पर टिका है ना?
बिल्कुल, बेरेशीत, जिसका अनुवाद आमतौर पर शुरुआत में किया जाता है। वैनोए के नोट्स का ये सबसे पेचीदा हिस्सा है।
तो इस एक शब्द में इतनी उलझन क्यों है?
उलझन इस बात की है कि व्याकरण के अनुसार ये शब्द पूर्ण अवस्था में है, जिसे एब्सोल्यूट स्टेट कहते हैं, या आश्रित अवस्था में, यानी कंस्ट्रक्ट स्टेट में।
इसे थोड़ा आसान भाषा में डीकोड करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये शब्द पूर्ण अवस्था में है, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा?
अगर ये पूर्ण अवस्था है तो ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तब इसका अनुवाद होगा, शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की,
और फिर एक फुल स्टॉप।
हाँ, फुल स्टॉप, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। और मजे की बात यह है कि मासोरेटिक टेक्स्ट के डिसजंक्टिव एक्सेंट्स, जो कि एक तरह का उच्चारण चिन्ह होता है, वो इसी बात का समर्थन करता है।
अच्छा, और मैंने नोट्स में पढ़ा था कि सेप्टुअजेंट जैसे प्राचीन अनुवाद भी से एक पूर्ण वाक्य ही मानते हैं।
बिल्कुल, लेकिन असली दार्शनिक समस्या तब खड़ी होती है जब कुछ विद्वान इसे आश्रित अवस्था में मानते हैं।
अगर ये आश्रित उपवाक्य है तो इसका अर्थ क्या होगा?
तब इसका अर्थ होगा, जब ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना शुरू की और फिर वाक्य अधूरा रह जाता है, जिससे वाक्य रचना बहुत अजीब हो जाती है।
रुकिए, अगर हम इसे ऐसे पढ़ें कि जब ईश्वर ने रचना शुरू की तब पृथ्वी बिना आकार की थी, तो ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है।
बिल्कुल बदल देता है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ईश्वर ने काम करना शुरू किया तब वो बिना आकार की पृथ्वी या कच्चा माल पहले से ही वहां मौजूद था।
और यही वो सबसे बड़ी गुत्थी है। ये उस बुनियादी अवधारणा को चुनौती देता है जिसे एक्स निहिलो कहा जाता है, यानी शून्य से सृजन।
अरे बापरे, केवल एक व्याकरण के नियम से ब्रह्मांड के शुरुआत का पूरा मतलब बदल सकता है?
हाँ, हालांकि वैनोए के नोट्स ऐतिहासिक और व्याकरणिक प्रमाणों के आधार पर ये स्पष्ट करते हैं कि इसे एक स्वतंत्र उपवाक्य मानना ही सबसे सही है।
चलिए हम मान लेते हैं कि शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि विद्वानों के बीच फिर भी इस बात पर बहस है कि इस वाक्य का असल मतलब क्या है।
हाँ बिल्कुल, और अगर हम इसे एक स्वतंत्र वाक्य मानते हैं तो इसके तीन प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं।
तो पहला सिद्धांत क्या है?
पहला है सारांश, या जिसे हम द हेडलाइन व्यू कह सकते हैं।
हेडलाइन व्यू, इसका मतलब ये हुआ कि उत्पत्ति का पहला वाक्य कोई घटना नहीं है, बल्कि वो पूरी कहानी का सिर्फ एक शीर्षक है।
सही कहा, जैसे अखबार की हेडलाइन होती है। नोट्स बताते हैं कि NIV स्टडी बाइबल भी यही मानती है कि ये पूरे अध्याय का सिर्फ एक शीर्षक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ी आलोचनात्मक सोच लगाऊं, अगर ये सिर्फ एक शीर्षक है तो कहानी की असल शुरुआत आयत 2 से होगी।
हाँ, आयत 2 से,
जो कहती है कि पृथ्वी बिना आकार के और खाली थी। अब जरा सोचिए, ये किसी भी कहानी को शुरू करने का बहुत अजीब तरीका लगता है। कोई भी कहानी ऐसे थोड़ी शुरू होती है कि शुरुआत में सब कुछ खाली और अंधेरे में था।
ये वाकई कहानी के प्रवाह को तोड़ देता है, और इसी तार्किक उलझन को सुलझाने के लिए एक दूसरा सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे गैप थ्योरी कहते हैं।
गैप थ्योरी। नाम से लग रहा है कि आयत एक और आयत दो के बीच कोई अंतराल है।
बिल्कुल, ये सिद्धांत मानता है कि आयत एक में एक बिल्कुल आदर्श रचना हुई थी, सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा गैप आया जिसमें कोई भयानक महाविनाश हुआ, एक कैटाक्लिज्मिक चेंज।
अच्छा, और उसी वजह से आयत दो में पृथ्वी बिना आकार की हो गई।
हाँ, और ये पूरा सिद्धांत हिब्रू शब्द हयाया की व्याख्या पर निर्भर करता है।
लोग इस गैप का इस्तेमाल शैतान के पतन और भूवैज्ञानिक समय मतलब जियोलॉजिकल टाइम को फिट करने के लिए करते हैं।
मतलब डायनासोर वगैरह का समय इसी गैप में डाल देते हैं।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन क्या व्याकरण इस बात की इजाजत देता है?
यही पर वैनॉय के नोट्स वेस्टन डब्ल्यू फील्ड्स की पुस्तक अनफॉर्म्ड एंड अनफिल्ड का हवाला देते हैं। वेस्टन फील्ड्स इस गैप थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं।
ओहो, वो क्या तर्क देते हैं?
वो बताते हैं कि हयाया शब्द का मतलब हमेशा बन गया नहीं होता। इस संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ था है, तो हयाया शब्द के आधार पर ऐसा कोई महाविनाश का दावा नहीं किया जा सकता।
तो गैप थ्योरी भी बाहर हो गई।
हाँ,
अब अगर हेडलाइन थ्योरी भी अजीब लग रही है और गैप थ्योरी भी खारिज हो गई, तो फिर तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है डच विद्वान GCH आल्डर्स का नजरिया, जिसे पदार्थ का निर्माण कहा जाता है। आल्डर्स के अनुसार आकाश और पृथ्वी का अर्थ ब्रह्मांड का कच्चा माल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स।
अच्छा, मतलब आयत एक में अंतिम उत्पाद नहीं बना बल्कि कच्चा माल बना।
बिल्कुल, आयत एक में कच्चा माल बना और आयत दो में उसकी अव्यवस्थित स्थिति बताई गई है कि वो बिना आकार का था।
इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया उपमा आ रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बाजार से लेगो का एक बड़ा डिब्बा लाते हैं।
हाँ, लेगो वाला उदाहरण।
हाँ, डिब्बा लाना आयत एक हो गया, शून्य से सृजन। फिर आप उस लेगो को जमीन पर बिखेर देते हैं, जो अभी बिना आकार का है, अव्यवस्थित है। ये आयत दो हो गई।
बहुत सही।
और फिर आप उस कच्चे माल से एक शानदार महल बनाना शुरू करते हैं, जो आयत तीन और उसके बाद की कहानी है, जहां व्यवस्था बन रही है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ऑल्डर्स का ये विचार हमें गैप थ्योरी की उस अड़चन से भी निकाल लेता है और शून्य से सृजन को भी सुरक्षित रखता है।
बिल्कुल,
और ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना और समझना कितना जटिल है।
तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, हमने ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप को समझा, ब्रह्मांड की अच्छाई और इंसान की विशेष स्थिति के बारे में जाना, और ये भी देखा कि एक प्राचीन हिब्रू शब्द का कितना गहरा व्याकरणिक प्रभाव हो सकता है।
हाँ, एक छोटे से शब्द ने कितनी बड़ी दार्शनिक बहस खड़ी कर दी।
ये दिखाता है कि जब हम सूचनाओं के सागर में होते हैं, तो आलोचनात्मक सोच यानी चीजों को गहराई से समझना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, और चर्चा का अंत में एक बिल्कुल नए विचार के साथ करना चाहूंगा।
हाँ जरूर।
अगर इंसानों को उस सर्वशक्तिमान रचयिता की छवि में बनाया गया है, जिसका मूल काम अव्यवस्था या केओस को व्यवस्था और सुंदरता में बदलना था, तो क्या हम अनजाने में अपने उसी आदिम और सबसे पुराने उद्देश्य को ही पूरा नहीं कर रहे हैं?
अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर जानकारी के पीछे छिपे रहस्य को खोजना जारी रखिए।